शंकराचार्य जी कहते हैं, इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है, अर्जुन का चित्त जो है मोहित था, डेल्यूडेड था, किसके बारे में, धर्म के बारे में, मेरी अभी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या कर्तव्य है, अभी ये मेरे को अभी समझ में नहीं आता है, और जो महान शोक सागर में डूब रहा है और वो रो रहा था, इतना उसको शोक हो गया था, ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव, मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य कह रहा हूं, बिना आत्मज्ञान के इस शोक सागर से निकलना असंभव है, ऐसा समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले। अर्जुन का प्रश्न केवल इतना ही था, भगवान मेरे को यह बताओ कि मेरी अभी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं धर्म के बारे में मोहित हूं। भगवान नहीं कहते तुम्हारा धर्म ये, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, सीधा शुरू कर दिया आत्मज्ञान, बिना आत्मज्ञान के आपका शोक कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सीधा आत्मज्ञान से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जो पंडित लोग हैं, पंडित मतलब जो आत्मज्ञानी लोग हैं, वो गतासून, गतासून मतलब जो चले गए हैं, अगतासून जो नहीं गए हैं, जो अभी यहां हैं, उनके बारे में शोक नहीं करते। क्यों नहीं शोक करते भाई? तो कहते हैं कि न त्वे वाहम जातु नासम न तम निमे जनाधिपा। ये जितने लोग जो यहां खड़े हुए हैं, ऐसा कभी नहीं था कि ये पिछले जन्म में नहीं थे। किस दृष्टि से नहीं थे? आत्मा की दृष्टि से। आत्मा की दृष्टि से ये सारे लोग पीछे भी थे, पिछले जन्म में, अभी आपके सामने खड़े हैं और इनकी मृत्यु के बाद भी ये रहेंगे। किस हिसाब से? आत्मा के हिसाब से रहेंगे। तो इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। फिर वो एक बताते हैं कि आत्मा किस दृश्य नित्य है। भगवान में आत्मा की नित्यता को लेके यहां पर डिस्कशन चल रहा है कि आत्मा नित्य है। अर्जुन को तो ये डर था ना कि ये सारे मारे जाएंगे। भगवान कहते हैं आत्मा नहीं मरता, आत्मा नित्य है, और उस चीज को समझा रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। कि आपके आपने बचपन को देखा अपने शरीर में, यौवन को देखा, जरा को अभी आप देखोगे, तो बचपन से जब आप यौवन में गए, ये देखो तीनों अवस्था एक साथ कभी नहीं रहती है। बचपन, यौवन, जरा एक साथ नहीं आता है, बुढ़ापा एक साथ नहीं आता, एक के बाद एक आता है। बचपन की मृत्यु यौवन का जन्म, बोले तब आप दुखी हुए थे? यौवन की मृत्यु और बुढ़ापे का जन्म, तब आप दुखी होते हो? नहीं होते हो। मैं जब बुढ़ापे की मृत्यु के बाद में फिर नया बचपन आने वाला है, यह पोर्शन दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसमें जो कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, देह को छोड़ने के बाद में फिर आपको जो नया शरीर मिलेगा, फिर जो बचपन मिलेगा, तत्र न मोहयति, कौन मोहित नहीं होते? धीर, धीर मतलब बुद्धिमान लोग, जिनको विवेक है वो मोहित नहीं होते। भगवान मेरे को तो अभी दुख है, अभी की बात करो, मैं तो अभी दुखी हूं। तो बोलते हैं क्यों दुख होता है? बोले मात्रा स्पार्शस्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख ना। बोले अभी जो तुमको दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? मात्रा स्पार्शस्तु, तू मतलब थोड़ा सा हम डाइवर्सन कर रहे हैं, अभी अभी आत्मा की बात छोड़ के अभी की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। दो श्लोक थोड़ा सा डाइवर्सन भगवान करते हैं कि जब भी आपकी ज्ञानेंद्रियां जब विषयों के साथ में संपर्क होता है तो उससे आपको सुख दुख शीत उष्ण आएगा, ये देंगे ही देगी। जैसे ही ज्ञानेंद्रियां विषयों के साथ में संपर्क होगा, ये चीजें घटेंगी, आएंगी। आगमा पाइनो, बोले आएंगी पाइनो, ये जाएंगी भी। क्यों? बोले ये अनित्य है सारी की सारी, तो क्या करना चाहिए मेरे को? तान तितिक्षस्व भारत है, आप तितिक्षा करो, फॉरबियर करो, सहन करो, ये आपके कर्म का फल है। आपको जो सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, किसके कर्म का फल है? मेरे कर्म का फल है, इसलिए सहन करो, क्योंकि कर्म फल आपको लेना ही पड़ेगा। कर्म आपने किए हैं, कर्म फल भी लेना पड़ेगा आपको। सहन करके क्या होगा, तितिक्षा करके क्या होगा, बताओ क्यों तितिक्षा करें? हम तो रोएंगे। बोलेगा अगर रोगे तो रो, तुम्हारी इच्छा है, मगर अगर सहन करोगे तो क्या लाभ होगा तितिक्षा करने से? तो भगवान कहते यम ही ने व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतात्ताय कल्पते। बोले अगर आप सम रहोगे सुख दुख में, तो कहते हैं क्या होगा? अमृत तत्वाय कल्पते, तो आप अमृत तत्व पाने के लिए क्वालिफाइड हो गए। शंकराचार्य जी कहते हैं वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठ शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए यानी मोक्ष के लिए समर्थ होता है। यू आर क्वालिफाइड फॉर लिबरेशन। कब क्वालिफाई फॉर लिबरेशन होता है? जब आप सम रहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान कहते हैं इसलिए भी शोक और मोह न करके शीतोष्ण आदि को सहन करना उचित है, जिससे कि ना असतो विद्यते भाव है। बोले असत तो है, होता ही नहीं कभी। ना असत विद्यतो भाव है, असत तो है ही नहीं है, और सत सत का कभी अभाव नहीं होता। उभयरूपी दृष्टः अंतस्तः अन्यो तत्वदर्शी भी, जो इसको जानता है, इन दोनों चीजों को जानता है कि सत कभी अभाव नहीं होता, कभी डिसेपियर नहीं होता, कभी उस नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, और असत है ही नहीं। हम लोग का क्या है विचार? हम लोग का विचार ऐसा है कि असत है, सत नहीं है। जितनी अनात्म चीजें हैं वो हैं, घर है, मकान है, शरीर है, सोफा है, गाड़ी है, सूर्य है, चंद्रमा है, सब अनात्म वस्तु है। शंकराचार्य जी कहते हैं है ही नहीं। और जो चीज दिखाई नहीं कर पाती है वो भगवान कहते हैं वो है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी एब्सेंट नहीं होती। तो असत के बारे में हम लोगों ने देखा था, शंकराचार्य जी ने कहा था कि यद विषया बुद्धि न व्यभिचरती तत्सत, जिसके बारे में बुद्धि बदलती नहीं है वो सत है, और जिसके बारे में बुद्धि बदलती है वो असत है। तो हर बुद्धि के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, क्या है, घड़ी है, फिर दूसरी वृत्ति आ गई ग्लास है, घड़ी गई ग्लास है। तो देखो है जो है ना सब में लगा हुआ है, चेयर है, टेबल है, एक बुद्धि बदलती जा रही है, घड़ी के बाद ग्लास आया, ग्लास के बाद चेयर आया, चेयर के बाद में टेबल आया। तो जहां बुद्धि बदलती है बोले वो सब असत है, अब बुद्धि जहां नहीं बदलती है नहीं बदलता, इसलिए है सत है। अगर आपने इसको जान लिया तो आप तत्वदर्शी हो गए। देखो कितना सिंपल जानना है, डिफिकल्ट है क्या समझना, यह कितना सीधा है। जिस जिस चीज के बारे में वृत्ति बदलती है वो सारी चीजें असत हैं, और जिसके बारे में नहीं बदलती है वो सत है। वेरी गुड। उसके बाद कहते हैं तो जो निसंदेह सत है और सदा रहता है वो क्या है, जो सत है उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। तो बोलते बताते हैं अविनाशी तु तद वृत्ति, उसका विनाश कभी नहीं होता, अविनाशी तु तद वृत्ति ये न सर्वम इदम ततम, ततम मतलब उसके द्वारा वो सारी चीजें व्याप्त हैं। कौन सी चीजें, इदम 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 करके जो जो तुमको जानते हो वो सारी की सारी व्याप्त है उससे। दिस 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 जितनी भी संसार की चीजें दिखाई पड़ती हैं सब इदम है, और उस इदम को वो अविनाशी तत्व व्याप्त करता है। बहुत अच्छा। विनाशम विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, और उसका विनाशम उसका कोई नाश उस अव्यय का, वो तत्व जो है अव्यय है, उसमें कोई कमी बेसी कुछ नहीं होती, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। बताओ आप में से कुछ कोई आदमी भी है पने का विनाश कर सकता है? दुनिया की सारी चीजें आप नाश कर सकते हो फिर भी है रहेगा, उसका नाश कभी नहीं होगा, उसका नाश आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। फिर कहते हैं असत क्या है, सत के बारे में तो आपने बता दिया अविनाशी है, असत के बारे में बताओ क्या चीज है। अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीर न अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा बोले ये जितने शरीर है ना ये अंत वाले हैं, अर्जुन तुम ये लोग जो खड़े हैं इनको मारो या मत मारो ये सब मरेंगे, अंतवंत इमे देहा। मगर इनके अंदर जो शरीरी है, जो आत्मा है, जो देही है, वो नित्य है, उसको तुम नहीं मार सकते। अनाशिनः वो कैसा है, इम्पेरिसिबल, उसका नाश नहीं हो सकता। अप्रमेय उसको तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब कोई बोले आपको आत्मा दिखाओ, आप ये नहीं बोल सकते ये आत्मा ये ऐसा, ये तो कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर आत्मा, अप्रमेय उसको आप दिखा नहीं सकते। इसलिए तस्मात युद्धस्य भारत, फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट निगमन। कंक्लूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, निगमन। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है भगवान का, तस्मात, जहां जहां भगवान कहेंगे तस्मात दैट मीन देयरफोर तुमको युद्ध करना चाहिए, युद्धस्य भारत है। ठीक है। अब इसके बाद में भगवान कहते हैं कि गीता शास्त्र में संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है। गीता शास्त्र क्या करता है, शोक और मोह को निवृत्त करने वाला है। गीता शास्त्र कर्म प्रवर्तक नहीं है। गीता ये नहीं कहती कि आप ये करो युद्ध करो, ऐसा नहीं है। इस अर्थ की साक्षी भूत दो ऋचाओं को भगवान उद्धृत करते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है मैं दो रेफरेंस आपको देता हूं, कहां से, बोले उपनिषद से देता हूं। कौन सा उपनिषद, कठोर उपनिषद से आपको देता हूं। गीता के पहले भी उपनिषद उपस्थित थे इसलिए भगवान दो बताते हैं। जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्मादि मारे जाएंगे और मैं ही उनका मारने वाला हूं, यह तेरी बुद्धि सर्वथा मिथ्या है। कैसे? अर्जुन तो ये सोच रहा था ना कि मेरे द्वारा ये सारे लोग मारे जाएंगे और मैं मारने वाला हूं, तो कैसे? तो इस पर भगवान जो है कठोपनिषद से दो मंत्र बताते हैं।
येनम वेति हन्तारम् येनम वेति हन्तारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते
यह एनम वेत्ति हंतारम, जो ऐसा जानता है कि मैं मारने वाला हूं, हंतारम मैं उस क्रिया को करने वाला हूं, मैं करता हूं। यस्य एनम मन्यते हतम, और जो यह क्रिया सोचता है कि मैं मारा जाऊंगा, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, कोई मानता है कि मैं मारने वाला हूं, आई एम द डूअर, अब कोई ये समझता है कि मैं मारा जाऊंगा मतलब मेरे ऊपर कर्म होगा। उभौ तौ न बिजानीत, उभौ दोनों, कोई ये सोचता है कि मैं मारने वाला हूं या मैं मारा जाऊंगा, दोनों ही। उभौ तौ न बिजानीत तो नायम हंती न हन्यते, दोनों में से कोई नहीं जानता है कि मैं न तो मारता हूं न मारा जाता हूं। थोड़ा सा फर्क, मैं मारता नहीं हूं न मारा जाता हूं। अगर ऐसा कोई सोचता है तो उसका सोचना गलत है। कैसे गलत है? जिसका वर्णन ऊपर से आ रहा है उस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है, हनन क्रिया का कर्ता मैं मारने वाला हूं, तो कहते हैं, और जो दूसरा कोई साधना देह के नाश से मैं नष्ट हो गया ऐसा नष्ट हुआ मानता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्म मानता है, ये दोनों ही दोनों ठीक नहीं जानते। देखो हम कई बार कहते हैं ना कि आत्मा कर्ता, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, हम बराबर कहते हैं ना आत्मा कर्ता, ये रेफरेंस है, बहुत सिंपल टर्म के ना आत्मा कर्ता है। हम कर्ता कब बनते हैं? हम कर्ता तब बनते हैं जब आत्मा उपाधि के साथ में संयुक्त हो जाता है, तब कर्ता बनता है। अगर आप उपाधि से डिटैच हो जाओ, हमने केवल डिटैच कहा है, केवल उपाधि से अगर डिटैच हो जाओ तो आप भी अकर्ता बन सकते हो, बन क्या सकते हो, आप अकर्ता हो, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। क्यों आत्मा अकर्ता है? क्योंकि आत्मा के पास में ग्रॉस बॉडी नहीं है, सटल बॉडी नहीं है, कॉजल बॉडी नहीं है। किसी भी कर्म करने के लिए आपको स्थूल शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए और कारण शरीर चाहिए, तीनों शरीर चाहिए, और आत्मा के पास में कोई भी शरीर नहीं है, इसलिए आत्मा कुछ नहीं कर सकता। हमारे गुरु ने कहा आत्मा निकम्मा है, इसलिए कहा। यहां पर उपनिषद भी यही कह रहा है, ये एनम वेत्ति हंतारम, जो ये समझता हूं कि मैं मारने वाला हूं मैं। यहां पर शुद्ध मैं आत्मा की बात हो रही है, यहां पर मैं अहंकार की बात नहीं हो रही है। जो आदमी जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, जो ज्ञानी है वो बराबर यही जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, और आत्मा और ब्रह्म कर्ता होता है, अकर्ता होता है। आत्मा ब्रह्म अकर्ता होता है। तो बोलते हैं अभिप्राय है कि जो शरीर में मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूं, मैं मारा गया हूं, इस प्रकार जानते हैं, वो दोनों ही आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, दोनों ही जानते हैं। न तो आत्मा करता है और न ही आत्मा के ऊपर क्रिया की जा सकती है। आत्मा अकर्ता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है। कर्म करने के लिए आपको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर चाहिए, इसलिए आत्मा अकर्ता है। दूसरा, आत्मा के ऊपर क्रिया हो सकती है कि नहीं? एक तो करता हुआ, उसके ऊपर क्रिया भी नहीं हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप उसके ऊपर। हमारा क्या हाल है? हमारा ये हाल है कि हम तो कुछ भी हो, किसने किया? मैंने किया है। करता हो गया ना, तुरंत करता हो गया। अच्छा, मेरे ऊपर क्रिया कैसे होती है? बहुत सिंपल है। उसने मेरे को ऐसे देखा। आपके ऊपर क्रिया हो गई कि नहीं? आप दुखी हो गए कि नहीं? साथ साथ कुछ नहीं किया उसने, केवल तिरछी नजर से आपको देखा और आपने देख लिया। देखा, वो हम वहां बैठे सत्संग में, वो ऐसे देख रहे थे हमें। हो गए नहीं आपके ऊपर क्रिया? आत्मा न तो करता है, न आत्मा पर क्रिया होती है। हमारा क्या हाल है? हमारा ये हाल है कि हम हरदम कहते हैं करता हमने, हम करने वाले हैं, हमने किया है, और हमारे ऊपर कर्म भी होते रहते हैं। किसी ने हरिओम नहीं कहा, देखा वो सामने से आ रहे थे, हरिओम नहीं कहा, हो गया ना हमारा हाल खराब, हमारे ऊपर कर्म हो गया। तो यहां कहते हैं कि आत्मा न तो करता है, न आत्मा के ऊपर कोई कर्म हो सकता है। उभय तो न भी जानी तो नायम हंति न हन्यते, क्योंकि यह आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है। विकार रहित, विकार किसमें होता है? विकार मतलब मॉडिफिकेशन, चेंज किसमें होता है? अनात्मा में, शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में, इसमें सब होता है विकार। मगर आत्मा तो इनके अलावा अलग है, इसलिए वो विकार सहित है कि रहित है? रहित है। क्योंकि ये आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है, न मारा जाता है। मतलब ये हुआ नित्य है, अर्थात न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है, न उसके ऊपर कर्म होता है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में घुसा हुआ ना कि तुम मारोगे, आत्मा की दृष्टि पर आओ। भगवान उसको बहुत ऊपर लेवल पर ले जाकर बता रहे हैं कि आत्मा जो है नित्य है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा करता नहीं है, आत्मा कभी किसी को नहीं मारता। अर्जुन तुम क्यों सोच रहे हो तुम मार रहे हो? और आत्मा मारा भी नहीं जा सकता, उसके ऊपर कोई क्रिया भी नहीं की जा सकती। अच्छा, एक महात्मा कहते हैं, बोले आत्मा कैसा है? बोला आत्मा पेट्रोल की तरह है, गाड़ी में पेट्रोल जैसा होता है वैसा है आत्मा। क्यों भाई ऐसा क्यों कहते हो? बोलते हैं कि पेट्रोल को कभी डिजायर होती है कि हमको हॉथन मॉल जाना है, पेट्रोल कभी कहता है? कौन डिसाइड करता है? ड्राइवर डिसाइड करता है ना, पेट्रोल कभी नहीं डिसाइड करता, आत्मा पेट्रोल की तरह, वो कभी नहीं डिसाइड करता कुछ। बहुत अच्छा। अच्छा, पेट्रोल कभी डिटरमिन करता है कि भाई इस गाड़ी का हॉर्स पावर कितना है? ये 600 सीसी का होगा तब हम चलेंगे, 800 का होगा तो नहीं चलेंगे, या प्लेन इतने हाई पावर होता है उसके अंदर हम चलेंगे, इसमें नहीं चलेंगे? नेवर डिसाइड्स। और सरल, क्या पेट्रोल ड्राइव करता है? नहीं करता ना। आत्मा भी ड्राइव नहीं करता, आत्मा भी कुछ नहीं करता। पेट्रोल रहने से गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी? आत्मा रहेगा तो आपका शरीर काम करेगा। आत्मा कभी नहीं कहता ये करो वो करो, कुछ नहीं कहेगा। बहुत खूब। एक और मंत्र बताते हैं।
न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणः, अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
न जायते म्रियते। यहाँ पर भगवान ये बताना चाहते हैं कि आत्मा जो है वो समय की पाबंदी में नहीं है। न जायते, इसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अच्छा, कभी कभी होता होगा, कभी कभी जन्म हो जाता, कदाचित ना, कभी नहीं। अच्छा, अयम, अच्छा अयम आत्मा भूत्वा भविता, भूत्वा होकर नहीं होना, भूत्वा अभविता, भूत्वा होकर अभविता नहीं होना, या अभविता भूत्वा नहीं होकर होना, दोनों ही नहीं होता है। हम बताएंगे क्या होता है, भूतवा क्या होता है, अभविता क्या है, अभविता से भूतवा क्या होता है, देखेंगे। फिर अजो, अजह, उसका जन्म नहीं है। उसके बाद में नित्य, नित्य कहता है उसकी मृत्यु नहीं है। अरे आगे तो आपने एक बार कहा ना जायते मृत्यु, फिर क्यों कह रहे हो बार बार उसकी एक ही चीज को? शाश्वत, शाश्वत मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है, पुराण, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। एक एक वर्ड जो है आप समझाएंगे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के मरने से भी वो आत्मा मरता नहीं है। तो टाइम के अंदर वो आत्मा पाबंद नहीं है। देखो हम लोग देखते हैं ना, अब जैसे स्प्रिंग आया, पहले हम लोग देख रहे थे क्या थे, सारे पेड़ स्केलेटन थे, हैं? उसके बाद उसमें पत्ते आए, पत्ते के बाद फूल आते हैं, फूल झड़ जाते हैं तो वहाँ फल आ जाते हैं, फल सूख जाते हैं फिर उसके अंदर बीज हो जाते हैं, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है इन सब चीज़ों में। फिर बीज उसके अंदर डाल दिया, फिर उसके अंदर से फिर पौधा हो गया, चेंज कंटिन्यूसली। टाइम के अंदर सारी चीज़ें चेंज बदलती रहती हैं, मगर ये आत्मा टाइम में पाबंद नहीं है। देखो इस श्लोक के अंदर देही या शरीरिणी वर्ड जो है फिर से भगवान ने यूज नहीं किया, इसमें उसका व्यवहार नहीं है कि देही या शरीरिणी, शरीरी। तो आत्मा कहते हैं न जायते, बोला उसका जन्म नहीं होता, बहुत अच्छा। न मृयते, मरता भी नहीं। वह कदाचित न, कभी नहीं होता ऐसा, कभी एक्सेप्शन हो जाए, एक्सेप्शन टू द रूल होता है ना, मतलब कैसे कभी हो जाता होगा, नहीं कदाचित कभी नहीं होता ये। भूत्वा अभविता, भूत्वा मतलब होकर नहीं होना, मतलब एक बार हो गया उसके बाद में अभविता नहीं हुआ, चला गया, खत्म हो गया। या अभविता नहीं होकर फिर हो गया, मतलब जन्म लेके मृत्यु हो गई या मृत्यु के बाद में फिर जन्म हो गया, दोनों ही नहीं पॉसिबल है इसमें। अजो नित्य, अजो मतलब एक ही बात, फिर जन्म नहीं होता, नित्य मृत्यु नहीं होती, तो क्यों दो बार कहा? तो बोले पहला वाला जो था ना वो नकारात्मक वे से कहा, ना 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 निगेटिव वे से कहा, अजो नित्य वो सकारात्मक है, एक नकारात्मक था निगेटिव वे से एक्सप्लेन किया गया, दूसरा पॉजिटिव वे से कह रहे हैं। शाश्वतो यम पुरानो न हन्यता माने अन्य शरीर, अच्छा ठीक है भाई। जन्म किसको कहते हैं, देखो इसको जरा समझना, अगर पकड़ सको तो अच्छा है। हम प्रूव करने जा रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आज तक तो आप लोग सुनते आए थे ना, न जायते न मृयते, जन्म नहीं होते, प्रूव करो कैसे नहीं जन्म होता है, कैसे मृत्यु नहीं होती, प्रूव करते। जन्म किसको कहते हैं? प्राग अभाव के अंत को जन्म कहते हैं, प्राग अभाव के जन्म को,
अंत को जन्म
कहते हैं। जैसे ये मान लो ये प्लेट है, ये प्लेट बनने के पहले इसका अभाव था, ये रूप नहीं था, प्लेट के जन्म के पहले प्राग अभाव था, वो प्राग अभाव जब अंत हुआ ये जन्म हो गया। देखो
प्राग क्या है?
प्राग मतलब प्रायर,
प्रायर एग्जिस्टेंस, प्राग
अभाव, एंड ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, प्राग अभाव, भाव इज एग्जिस्टेंस, प्राग मीन्स प्रायर, एंड ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड जन्म। डिफिकल्ट है नहीं ना? व्हाट इज मृत्यु? प्रध्वंसाभाव। अब ये टूट गया, ये फॉर्म, ये नाम रूप अब नहीं है, प्रध्वंस अभाव, उसको हम मृत्यु कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? यहां तक अब हमको सिद्ध करना है कि आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अच्छा, इसका जन्म होते किसने देखा? प्राक अभाव की मृत्यु या प्राक अभाव का जब एंड हुआ तब इसका जन्म हुआ। देखने और जानने वाले को सेंसिएंट बीइंग होना होगा। गिलास नहीं कह सकता किसका जन्म हुआ, क्या गिलास कह सकता है? क्योंकि गिलास जड़ है, इनर्ट है। जड़ किसको कहते हैं? जड़ उसको कहते हैं जिसको ना अपना भान हो और न ही कोई दूसरे का भान उसको होता है। इसको अपना भान नहीं है, इसको यह भी भान नहीं है कि इसके बगल में गिलास है। मालूम है इसको? इतना तक मालूम है ना आप लोगों को? किसको मालूम हो रहा है ये? किसी सेंसियंट बीइंग को पता लगता है। अभाव से भाव में आना, भाव से अभाव में जाना, भाव से अभाव में जाना मृत्यु, अभाव से भाव में आना जन्म। तो ये जन्म और मृत्यु को कौन देखता है? कोई चेतन व्यक्ति देख सकता है? मानते हो आप लोग? क्यों पद्मा जी, मानते हो? चेतन देखता है। तो चेतन इस वस्तु के जन्म के पहले था, जन्म होने के बाद भी था। इतना तक मान लिया आप लोगों ने? चेतन तत्व तो चाहिए ना। अब मान लेते हैं कि आत्मा का जन्म हुआ, किसने देखा? मान लेते हैं आत्मा का जन्म हुआ, सपोज, उसको जानने वाला कौन होगा? कोई चेतन ही होगा कि नहीं, कि जड़ होगा? चेतन होगा। तो उस आत्मा के जन्म के पहले चेतन तत्व था। अब आप बोलोगे ये आत्मा नंबर एक है, जानने वाला आत्मा नंबर दो है। कठिन तो नहीं हो रहा है? किसी भी जन्म और मृत्यु को जानने वाला कोई चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं हो सकता। अगर हम बोलें कि आत्मा का जन्म होता है, तो इस जन्म को जानने वाला भी कोई चेतन तत्व होना चाहिए, जड़ नहीं हो सकता। अगर वो चेतन तत्व जानने वाला है और पहला चेतन तत्व जो जिसका जन्म हो रहा है और जानने वाला है, तो हमको ये कहना होगा कि चेतन नंबर वन का जन्म चेतन नंबर दो देख रहा है, और चेतन नंबर दो का जन्म चेतन नंबर तीन देख रहा है, चेतन नंबर तीन का जन्म चेतन नंबर चार देख रहा है। इस तरीके से करते हुए हम चेतन इनफाइनाइट बना बैठेंगे, जो कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है भाई? क्या तकलीफ है आपको? चेतन एक नहीं है, अनेक है। चेतन अगर एक से ज्यादा दो हो जाएंगे तो वो चेतन सीमित हो जाएगा। एक चेतन को हम इनफाइनाइट कहते हैं, जैसे ही दो चेतन हो जाएंगे दे विल बिकम फाइनाइट, और जैसे ही वो फाइनाइट हो जाएंगे वो दृश्य बन जाएंगे। जब वो दृश्य बन जाएंगे तब जड़ हो गए, जड़ हो गए तो मृत्यु है, तो हमारा चेतन मरने वाला हो जाएगा। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता। उसी तरीके से आत्मा की मृत्यु, अब कोई बोले आत्मा की मृत्यु होती है, चलो मान लेते होती है, किसने देखा? देखने वाला चेतन होना चाहिए। फिर वही फॉर्मूला लगा लो, आत्मा की मृत्यु ही, एक नंबर आत्मा की मृत्यु ही, दो नंबर आत्मा ने देखा, फिर दो नंबर आत्मा की मृत्यु, तीन नंबर आत्मा ने देखा, इनफाइनाइट आत्मा हो गए। और जैसे ही इनफाइनाइट आत्मा हो जाएंगे, मतलब नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, तो वो आत्मा सीमित हो गई, फिर इनफाइनाइट नहीं रही, वो भी हम नहीं मान सकते। अब आप लोग प्रूफ कर दोगे ना, अगर कोई आपसे पूछे कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा का न जन्म हुआ न मृत्यु हुई, भूतवा अभविता, जन्म होके मर गया, ये भी नहीं होता, नॉट पॉसिबल। मरने के बाद में फिर जन्म हो गया अभविता भूत्वा, ये भी नहीं होगा, दोनों ही नॉट पॉसिबल. आज उसका जन्म नहीं है और नित्य है उसकी मृत्यु नहीं है, वो इटर्नल है. शाश्वतोयम, यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं शाश्वत वर्ड की व्याख्या करते हो, कोई एक एक वर्ड की व्याख्या कैसी है. आपने कह दिया जन्म भी नहीं है इसका, मृत्यु भी नहीं है, मगर जन्म और मृत्यु के बीच में तो कुछ हो सकता है ऊपर नीचे. बोलते नहीं, यद्यपि आदि और अंत दो विकारों के प्रतिषेध के बीच में सभी विकारों का प्रतिषेध हो जाता है. नॉर्मली सब आदमी समझ जाएंगे कि अगर इसका जन्म भी नहीं है मृत्यु भी नहीं है तो बीच में कोई इसका मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई विकार नहीं है, सब समझ जाएंगे. तो भी बीच में होने वाले विकारों का भी उन उन विकारों के प्रतिषेधार्थक खास खास शब्दों द्वारा प्रतिषेध करना उचित है. फिर भी हम लोग को बताने के लिए भगवान कहते हैं तुमने मान लिया उसका जन्म नहीं हुआ, तुमने यह भी मान लिया कि उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, मगर जन्म और मृत्यु के बीच में कोई विकार हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए भी एक शब्द देना बहुत जरूरी है. इस वास्ते वो शब्द क्या कहा, उसको कहा शाश्वत. इसलिए ऊपर न कहे हुए जो यौवन आदि सब विकार है हमारे शरीर में, हमने देखे ना बचपन यौवन बुढ़ापा, ये विकार है, चेंजेज हैं. अगर कोई आदमी ये समझे कि भाई आदमी का तो जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है और बीच में विकार भी होते रहते हैं, तो आपने तो आत्मा के बारे में केवल जन्म बताया, उसका जन्म नहीं होता, आपने ये भी बताया कि आत्मा मरती भी नहीं है, वो जन्म और मरण के बीच में भी कुछ होता है कि नहीं बताओ. बोलते हैं शाश्वत, उसमें कुछ नहीं होता है, उसका प्रतिषेध हो ऐसे भाव को शाश्वत इत्यादि शब्दों से कहते हैं. तो शाश्वत वर्ड का मतलब यह हुआ कि जन्म और मृत्यु के बीच के अंदर भी कोई आत्मा में चेंजेज नहीं होती हैं, अच्छा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई क्षय नहीं है, समझ लिया. फिर उसके बाद पुराण क्यों का, ये क्या कोई पुराण है, महापुराण 18 पुराण है ऐसे ऐसा कुछ है ये, या पुराना मीन्स क्या ओल्ड है ये. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. शंकराचार्य जी कहते हैं सदा रहने वाले का नाम शाश्वत है. शाश्वत शब्द से अपचय क्षय होना रूप विकार का प्रतिषेध किया जाता है. शाश्वत का मतलब उसमें क्षय नहीं होता, उसमें कमती नहीं होती है. बहुत अच्छा. क्यों नहीं होता भाई आत्मा में, देखो बहुत सुंदर शब्द कहा उन्होंने, क्योंकि आत्मा अवयव रहित है. अवयव मतलब पार्ट्स, शरीर में हमारे पार्ट्स हैं. अच्छा जहां जहां पार्ट्स होते हैं ना वो सब के सब मरने वाले होते हैं, जहां जहां भी पार्ट्स हैं, एरोप्लेन में हो कार में हो घर में हो सब पार्ट्स हैं, जहां जहां पार्ट्स हैं सारे के सारे मरने वाले हैं. क्योंकि आत्मा अवयव रहित है इस कारण स्वरूप से उसका क्षय नहीं होता, और निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता. दो चीजें बताई उन्होंने, एक तो आत्मा के पार्ट्स नहीं है. क्यों पार्ट्स नहीं है, पहले ही हमने बताया क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं है. स्थूल शरीर के अंदर हाथ पांव आंख ये सब स्थूल शरीर में है, आत्मा में नहीं है. और ये शरीर किससे बना हुआ है, त्रिगुण से, सत्व रजस तमस से बना हुआ है. और आत्मा, आत्मा क्या त्रिगुण से बना है, नहीं आत्मा त्रिगुण से नहीं बना है, सारी दुनिया त्रिगुण से बनी है. आत्मा को छोड़कर जो भी कुछ आपको मालूम है वो सब की सब चीजें त्रिगुण से बनी हुई हैं. 14 लोक जो है वो त्रिगुण से बने हुए हैं, मेरा शरीर त्रिगुण से बना हुआ है, सब जीवों का शरीर भी त्रिगुण से बना हुआ है, सत्व रजस तमस से बना हुआ है, मगर आत्मा त्रिगुण रहित है इसलिए उसमें कुछ चेंज नहीं होता, कोई विकार नहीं होता. पुराण, पुराण क्यों शब्द कहा, शंकराचार्य जी लिखते हैं इस शब्द से अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि रूप विकार होता है, शास्त्र से कहे कि उसमें डिके, शास्त्र कहता है कि उसमें आत्मा में डिके नहीं होता, पुराण शब्द कहता है उसमें वृद्धि नहीं होती। हमने तो जन्म और मृत्यु के अंदर अपक्षय और वृद्धि दोनों देखी है ना, जन्म के बाद में आपने देखा शरीर बढ़ता है, बुढ़ापे में फिर क्षीण होता रहता है। तो यहां पर कहते हैं कि शाश्वत वर्ड जो है वो ये बताना चाहता है कि आत्मा में क्षय नहीं होता, और पुराण शब्द से ये बताना चाहते हैं कि आत्मा में वृद्धि नहीं होती, क्षय भी नहीं होता, डिके भी नहीं होता, इंक्रीज भी नहीं होता। और बहुत बड़ी अच्छी परिभाषा यहां दी गई है, पुरापि नव इति पुराना, जो पुराना है मगर नया लगता है, पुराना है मगर नया लगता है। ऐसी कोई वस्तु है दुनिया में जो पुरानी है मगर नई जैसी लगती है? कोई नहीं। मगर ये पुराना है, सबसे पुराना है, दुनिया के पहले भी ये था, इससे पुरानी कोई चीज नहीं है, मगर नया लगता है। क्यों भाई नया लगता है? क्योंकि इसमें वृद्धि और क्षय नहीं है, कुछ नहीं चेंज है इसमें, नया वैसे का वैसा ही है, जैसे था वैसा का वैसा है। देखो ना, आप लोग को इजनेस में कहीं पर डिफरेंस नजर आता है? इजनेस कम बेसी होता नजर आता है कहीं पर? कुछ नहीं होता उसमें। तथा शरीर का नाश होने पर यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होगा मगर आत्मा का नाश कभी नहीं होता। अर्थात दुर्बलता आदि अवस्था को प्राप्त नहीं होता। दुर्बलता मतलब हम लोग दुर्बल फील करते हैं ना कई बार, बीमारी के बाद दुर्बल नहीं चल सकते हैं, बस डॉक्टर कहता है और थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा और विटामिन दो, टॉनिक दो, उसके बाद में करो। तो ये आत्मा, बोले ये आत्मा में उसमें कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। इसके बाद में एक और चीज कहने जा रहे हैं जो हम लोगों ने तत्व बोध में पढ़ा है कि स्थूल शरीर में छह विकार होते हैं। कौन से छह विकार होते हैं? वर्तते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो शंकराचार्य जी ने कहते हैं कि मैंने ही तो वहां तत्व बोध में लिखा है, तुम अभी पूछोगे कि इन दोनों के बीच में जन्म और मृत्यु के अंदर ये छह विकार होते हैं कि नहीं, बताओ आत्मा में। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं इस मंत्र में लौकिक वस्तुओं में होने वाले छह भाव विकारों का आत्मा में अभाव दिखाया जाता है। देखो यहां एक्सप्लेन भी कर दिया, तत्व बोध को भी ले आया यहां पर। आप लोगों ने तत्व बोला पढ़ा ना, छह विकार होते हैं, किसमें विकार होते हैं? वस्तुओं में, वस्तुओं में तो हमारे जन्म के अंदर हम लोगों ने देखा ना, अस्थि, जब हम गर्भावस्था में रहते हैं तो कहते हैं अस्थि, आप डॉक्टर के पास में जाते हो, सोनोग्राफी करके बोलता है बेबी ओके डूइंग वेल, अस्थि। उसके बाद जायते, जन्म हो गया, जन्म के बाद 7 pound बेबी बर्धते, बड़ा होता है। कब तक बड़ा होगा? 25 साल तक, याद रखना है, मैंने बहुत बार कहा है बर्धते 25 साल तक। कुछ साल तक ऐसे लंबा में बड़ा होगा, उसके बाद 25 का विपरीन मते मैच्योर, 40 years तक मैच्योर, जैसे ही 40 साल हो गया अपक्षीयते, डाउनवर्ड जर्नी शुरू, या क्रॉस 5th station हेडिंग फॉर द लास्ट स्टेशन विनश्यति। तो बोलते हैं ये छह विकार जो हैं आत्मा में नहीं है। आप लोग इसके ऊपर में मनन करना जरूर, जन्म क्यों नहीं हुआ, मृत्यु क्यों नहीं होती, कैसे हम प्रूव करें कि उसका जन्म होता नहीं है। साधारण प्रवचन करना बहुत आसान है, आत्मा का जन्म नहीं होता, मरता नहीं, कभी भी नहीं होता है, आजो नित्य शाश्वत है, वो ऐसे ही है, बस हो गया खत्म, श्लोक खत्म। बट प्रूव करो, कैसे जन्म नहीं होता, कैसे उसकी मृत्यु नहीं होती, इसके ऊपर आप विचार करना तो आपको पता लग जाएगा सचमुच ही आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा के अंदर कोई क्षय नहीं है, इस वास्ते शाश्वत वर्ड, आत्मा के अंदर कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए पुराण वर्ड भगवान ने कहा। और शरीर के मरने पर न हन्यते हन्य माने शरीरे, और उसके शरीर के मरने पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये तो हम सुनते हैं बराबर, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती, जानते हैं क्यों नहीं मृत्यु होती है, अब आप प्रूव कर देना। प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव, प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव, प्राग अभाव, प्राग अभाव जैसे ही खत्म हुआ उसको हम जन्म कहते हैं, प्रध्वंसाभाव मृत्यु के बाद में जो अभाव होता है उसको हम प्रध्वंसाभाव कहते हैं। हो गया, चल तो फिर आगे।
वेदा विनाशिनम नित्यम,
वेदा विनाशिनम नित्यम,
येनम अजमव्ययम,
येनम अवमद्वयम्,
कथम सपुरुषः पार्थ,
कथम सपुरुषः पार्थ,
कं घातयति हन्तिकम्,
कं
घातयति हन्तिकम्, वेदा विनाशिनम् नित्यम्, येनम अजमव्ययम्, कथम सपुरुषः पार्थ, कं घातयति हन्तिकम्।
शंकराचार्य जी भाष्य लिखने के पहले कहते हैं यह एनम वेत्ति हंतारम, इस मंत्र से मतलब 19वें नंबर श्लोक से 20वें नंबर श्लोक तक जो दो मंत्र कठोपनिषद से लिए गए हैं उसके बारे में कहते हैं कि इस मंत्र से आत्मा हनन क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है, आत्मा हनन क्रिया का न तो कर्ता है और न ही आत्मा के ऊपर में हनन क्रिया की जा सकती है। आत्मा हनन का कर्ता नहीं है, क्यों नहीं करता है, स्वरूप सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है, इस वास्ते आत्मा, इसीलिए हम बराबर क्या कहते रहते हैं, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा निकम्मा है, ऐसा कहते रहते हैं, आत्मा अकर्ता है, अकर्ता है, क्योंकि उसके पास में इक्विपमेंट नहीं है इसलिए वो करता नहीं है। और उसके ऊपर में हनन क्रिया, क्या आप उसको मार सकते हो, क्या उसके ऊपर में कर्म कर सकते हो, तो बोले कर्म भी नहीं कर सकते हम। इस चीज को प्रूव करने के बाद में अब वो कहते हैं यह प्रतिज्ञा करके तथा न जायते, इस मंत्र से आत्मा की निर्विकारता, न जायते में उसमें यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा में कोई विकार नहीं है, विकार नहीं मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, शाश्वत वर्ष से कोई क्षय नहीं है, पुराण शब्द से कोई वृद्धि नहीं है आत्मा के अंदर में, इस विकार उसको प्रूव कर दिया गया कि आत्मा में कोई विकार नहीं है। इस मंत्र से आत्मा की निर्विकारता के हेतु को बतलाकर अब प्रतिज्ञा पूर्वक कहे हुए अर्थ का उपसंहार करते हैं, अब उसको वो कंक्लूजन पर आ रहे हैं, उपसंहार मतलब इज नाउ कंक्लूडिंग। तो कंक्लूजन नंबर वन आपको बताया था ना अभी, निगमन नंबर एक, निगमन नंबर एक आपको बताया था, तस्माद् युद्धस्व भारत 18वां नंबर श्लोक, कंक्लूजन नंबर एक। नाउ कंक्लूजन नंबर टू, व्हाट इज कंक्लूजन नंबर टू, वेद अविनाशिनम नित्यम, वेद नो, वेद मतलब बिजानाति, क्या जानो भाई, अविनाशिनम कि वो आत्मा अविनाशी है, नित्यम वो नित्य है, यह एनम अजम वो अजम है, अज अनबॉर्न, अव्ययम उसमें कोई क्षय नहीं है, क कथम स पुरुष पार्थम कम घाते अति हंतिकम, ऐसा जानने वाला व्यक्ति कैसे उसको मार सकता है या किसी के द्वारा मरवाया जा सकता है। थोड़ा सा चेंज किया है, न मारता है न किसी के द्वारा मरवाया जाता है। हम लोग कभी कभी करते हैं ना, किसी को मारना होता है या तो खुद जाके थप्पड़ लगा दो या किसी बोले जाके मार दो उसको। तो यहां कहते हैं कि न वो मारता है न मरवाया जाता है। क्यों भाई? तो यहां कहते हैं पूर्व मंत्र में कहे हुए लक्षणों से युक्त इस आत्मा को जो अविनाशी, अविनाशी का मतलब अंतिम भाव विकार रूप मरण रहित, अविनाशी मतलब मरण रहित, डेथलेस। एक एक वर्ड का व्याख्या कर रहे हैं शंकराचार्य। अविनाशी का मतलब जिसकी मृत्यु नहीं होती। नित्य का मतलब क्या है? रोग आदि जनित दुर्बलता क्षीणता आदि विकारों से रहित। देखो आत्मा में कोई रोग वगैरह भी नहीं होता। रोग किसमें होता है? शरीर में। शरीर क्या है? आत्मा ना अनात्मा? अनात्मा। तो रोग कहाँ होता है? आत्मा में रोग नहीं है, इसलिए उसको नित्य शब्द कहा। अजह, अजह मतलब जन्म रहित। अव्यय अपक्षय रूप विकार रहित, अपक्षय में डीके। आत्मा में डीके नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा में कोई रोग नहीं है, दुर्बलता नहीं है, और आत्मा के अंदर अविनाशी है। अविनाशी का मतलब उसमें मरण नहीं है। वह आत्म तत्व का ज्ञाता कथम से पुरुष है पार्षद, जो ऐसा जानता हो, जो ऐसा जानता हो। तो बोलते हैं कैसे? वह आत्म तत्व का ज्ञाता अधिकारी पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है, दोनों ही क्रियाएं नहीं हो सकती। देखो जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी कभी भी अनात्मा को आत्मा नहीं समझता। दुनिया में कितनी चीजें हैं? कौन कौन सी है? आत्मा क्या है बीएमआई चार्ट के अंदर? ओम को छोड़कर बाकी सब। तो दुनिया की जितनी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं वो सब क्या है? ये सारी की सारी अनात्म वस्तुएं विकारी हैं, चेंज होती हैं। देखते हैं, रोज देखते हैं हम लोग, सब चेंज होती हैं, विकारी हैं सब। और आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। तो ज्ञानी जो है अनात्म वस्तु को आत्मा नहीं समझता और अज्ञानी अनात्म वस्तु को आत्मा समझता है। ये शरीर तुम्हारी आत्मा कौन है? बोले ये शरीर आत्मा है। ज्ञानी जो है जगत को मिथ्या कहता है, अज्ञानी जगत को सत्य कहता है। बोले हम तो ट्रांजेक्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे कहते हो ये नहीं है असत? तो व्यवहार करते हैं। बल्कि आपका भगवान जो है ना वो असत है, दिखाई नहीं पड़ता। अगर सत तो दिखाई लाके दिखाओ, हमको आत्मा को दिखाओ, तब हम मानेंगे। अज्ञानी ऐसा कहेगा और ज्ञानी, ज्ञानी बोलेगा भाई ये तो सारी की सारी चीजें अनात्मा है, हम इसको आत्मा नहीं मानते और जगत हमारे लिए मिथ्या है, जगत सत्य नहीं है। तो इस तरह से भगवान यहां पर सेकंड कंक्लूजन बताते हैं कि आत्मा कैसा है? अविनाशी, उसमें कोई मृत्यु नहीं है। नित्यम, उसमें कोई रोग नहीं हो सकता। अजम, उसका जन्म नहीं होता। अव्ययम, उसका अपक्षय, उसका छीन नहीं हो सकता। कथम से पुरुषय पार्थम कम घातयति हंतिकम, बोले ऐसा करने वाला, ऐसा जानने वाला आदमी न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मरवाता है। देखो अर्जुन के मन में ये था कि भगवान जो है मेरे द्वारा इनको मरवाना चाहते हैं. देखो ऐसा भाव था, इसलिए वर्ड आया मरवाना. उसके मन में जो चल रहा था भगवान उसको आस्ते 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 ठीक कर रहे हैं. इसके बाद में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आने वाला है, इसको हम लोग अब आप देखेंगे अगले दिन. वासांसि जीर्णानि. ओ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.